आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, जो वृंदावन के छह गोस्वामियों में से एक हैं, इसलिए आज हम भजन गा रहे हैं। तो इस भजन में बताया गया, एक बार करुणा करो वैष्णव गोस्वामी, हे वैष्णव गोस्वामी एक बार दया करो, आपके बिना पतित पावन कोई नहीं है। जहाँ निकट गए पाप दूर हो जाए, एक वैष्णव के पास जाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। शिकायत है कि कोई हवा चल रही है और हवा स्पर्श होकर वैष्णव को स्पर्श करके आपको स्पर्श होते तो कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो, इतना वैष्णव की है। जहाँ वैष्णव रहते हैं वहीं सारे तीर्थ रहते हैं, जहाँ कोई वैष्णव रह रहे हैं वहाँ कोई भी पर्वत हो वो गोवर्धन भक्ति विनोद ठाकुर का स्वामी है, जहाँ कोई भी नदी गहरी है वो यमुना है, और वहाँ पर कोई भी वन हो वो वृंदावन। और आपके यहाँ पर पंजाबी भाग में इतने सारे सुंदर वैष्णव, एक्चुअली ये भी वृंदावन है। यहाँ बताया गया है कि उनके पास जाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं। ये कल हम सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं में चर्चा कर रहे थे सवेरे भागवतम क्लास में, कि सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास मिलने जाते हैं, महाप्रभु गले लगाते हैं, महाप्रभु होते हैं सनातन गोस्वामी होते हैं, मेरे को मत छुओ, मैं अपवित्र हूँ, मैं पापी हूँ, मैं गंदा हूँ। और सनातन गोस्वामी बोलते हैं, महाप्रभु बोलते हैं कि मैं आपको स्पर्श कर रहा हूँ अपने आप को पवित्र करने के, आंखों की सफलता है आप जैसे वैष्णव को देखने, स्पर्श इंद्रिय की सफलता है वैष्णव को चरण स्पर्श करने में, और जीवा की सफलता है वैष्णव का गुणगान करने। महाराज युधिष्ठिर महाभारत की लड़ाई होने के बाद जब विदुर जी लौट कर आते हैं तो महाराज युधिष्ठिर उनका स्वागत करते हैं, तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जैसे वैष्णव तीर्थों को तीर्थ करते, वही बात यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान हरि के चरणों में कर गंगा के स्पर्श करने से पावन होता है। तो यहाँ पर थोड़ी दूरी पे गंगा है 100 किलोमीटर में भी, और यमुना तो बहुत पास में है, तो पवित्र नदियों में स्नान करने से या पानी लेने से व्यक्ति पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव के दर्शन से पवित्र करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी अपने गुरुदेव से मिलते हैं ईश्वरपुरी से, तो पिंडदान करने गए होते हैं। महाप्रभु के पिताजी जगन्नाथ मिश्र जब वापस भगवत धाम जाते हैं तो अपने पिताजी के स्मृति में पिंडदान करने के लिए गया में जाते हैं, और वहां पर ईश्वरपुरी से मिलते हैं और ईश्वरपुरी का गुणगान करते हुए कहते हैं, यहाँ पर आकर पिंडदान करने से जिस व्यक्ति के नाम से पिंडदान किया है उसका उद्धार होगा, लेकिन आप जैसे वैष्णव को देखते ही हजारों पूर्वजों का उद्धार होगा। इसीलिए वैष्णव का समागम डिवोटी एसोसिएशन यही सबसे बड़ी संपत्ति। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं, दुखों में सबसे बड़ा दुख क्या है? लैपटॉप खो जाना, बिजनेस में लॉस होना, परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाना, मोहन गौतम सबसे बड़ा दुख क्या है? महाप्रभु पूछते हैं, रामानंद राय क्या जवाब देते हैं? हाँ, वैष्णव का संग नहीं। तो आप हमेशा स्मरण रखिए कि जो ये सौभाग्य हमें मिल रहा है इस सुंदर मंदिर में, कुछ वर्ष पहले तो यहाँ कोई फैसिलिटीज ही नहीं थी, डिवोटी स्ट्रगल कर रहे थे, और इतनी सुंदर फैसिलिटी है, उसके रियल उसको सबसे महत्वपूर्ण भाग है भक्तों का जो संग यहाँ मिल रहा है। अगर हम कोई चीज़ की कीमत को नहीं समझते, उसको हम अवहेलना करते हैं, तो भगवान उस सुविधा को छीन लें। भक्तों का संग ही सबसे बड़ी संपत्ति। हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। अगर मान लो कि भगवान हरि के प्रति अपराध करता है तो हरि नाम लेने से अपराध माफ हो सकता है। हरि नाम में इतनी शक्ति है कि मर्डर चोरी परस्त्री काम भी अगर किसने किया हो अगर सच्चे दिल से हरि नाम लेता है तो शुद्ध हो सकता है। लेकिन वैष्णव अपराध ऐसा नहीं, वैष्णव के प्रति अपराध किया है तो कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय है कि वैष्णव के चरणों में जाकर माफी मांगे। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, आपके हृदय में हमेशा भगवान गोविंद निवास करे। अभी आप कहेंगे कि भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, नहीं? भगवान गीता में बोलते हैं सर्वत्र चाहम विभीषण विश्व, सबके हृदय में रहते हैं, लेकिन फिर भी वैष्णव के हृदय में भगवान प्रकट हो रहे हैं। वैष्णव अपने हृदय में स्थित भगवान को जान पाते हैं, अधिकांश लोग अज्ञान में जान नहीं पाते क्योंकि परम मित्र हृदय के स्वामी कृष्ण हमेशा उनके साथ। गोविंद कहे न मोर वैष्णव प्राण, भगवान बोलते हैं वैष्णव ही मेरे प्राण। आपको कहानी मालूम है, अम्बरीश महाराज जब भी दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास करते हैं और अम्बरीश महाराज अपने आप को डिफेंड भी नहीं करते, भगवान से प्रार्थना भी नहीं करते, मेरी बच्चा भयानक राक्षसी व्यक्ति आ जाए और अम्बरीश महाराज बस भगवान को याद करते। फिर भगवान राधिका रमन जी गोपीनाथ जी इतना चक्र भेजते, वो चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे लगे। दुर्वासा मुनि जाते सब जगह पर, इंटरनेशनल फ्लाइट वैकुंठ था, ब्रह्मलोक के बाद वैकुंठ था, जहां भी जाते हैं वो चक्र होता है, लेकिन अंत में भगवान नारायण के पास होते हैं। भगवान बोलते हैं मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अहम भी भक्त पराधीन हूं, मैं भी भक्तों के पराधीन हूं, अब मेरे भक्तों ने मुझे जीत लिया, हृदय को जीत लिया सेवा से। साधु मेरे हृदय में रहते हैं, मैं साधु के हृदय में रहता हूं, साधु मेरे अलावा कुछ नहीं जानते और मैं साधु के अलावा कुछ नहीं जानते। कल के परपोर्ट में प्रभुपाद जी का हम पढ़ रहे थे यहां चैतन्य चरितामृत क्लास में, इसीलिए राधा रानी और कृष्ण में राधा रानी विजयी हो जाए, क्योंकि राधा रानी प्रेम की शक्ति है, वो अपने आराध्य देव कृष्ण को जीतते और जो भी शुद्ध भक्त हैं उनके अंदर राधा रानी की प्रेम की एक छोटी सी चिंगारी है, वो छोटी सी स्पार्क उसकी इतनी शक्ति है कि भगवान उस भक्त के अधीन हो जाते। और अंत में श्री नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं प्रति जन्मे कोई आशा चरण रह धूली, नरोत्तम कर दया अपने रह भूली। जन्म जन्मांतर मुझे थे वैष्णव की चरण की धूली चाहिए। मानसिक रूप से हम अपने आप को उस स्थान में रहने की विचार कर सकते हैं जहां पर आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का समाधि है वृंदावन में राधा रमन मंदिर के पास, और गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना कर सकते कि हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकें। उन्होंने राधा रमन को प्रकट किया एक शिला से और हमारे हृदय भी उसमें बहुत जो बहुत कठोर है इस समय उसमें भगवान प्रकट हो। श्री चैतन्य चरितामृत में थोड़ा सा वर्णन आता है महाप्रभु के श्रीरंगम यात्रा का, उसके आधार पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत में गोपाल भट्ट गोस्वामी का डायरेक्टली नाम या उनका वर्णन नहीं आता, क्योंकि हर एक वैष्णव का अलग अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने नम्र थे कि जब कृष्ण कविराज गोस्वामी आए कि मैं किताब लिख रहा हूं आप आशीर्वाद दो, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने कहा कि मैं इस शर्त पे आशीर्वाद दूंगा कि मेरा नाम भी मत लिखना उसे। इसलिए गोपाल भट्ट गोस्वामी का ज्यादा वर्णन नहीं है, थोड़ा सा उनके पिताजी का था विक्रम। आज के जमाने में भी जब हम कोई थीसिस लिखते हैं या कॉलेज में कुछ लिखते हैं तो जो प्रोफेसर होते हैं उनका सिग्नेचर उनका आशीर्वाद चाहिए, और बोलते हैं मैं इतना आशीर्वाद दूंगा मेरा नाम शुरुआत में बीच में और अंत में सब जगह जाता है, क्योंकि प्रसिद्धि चाहिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी इस एग्जाम्पल ऑफ त्रिनादी सुनी गोपाल जी बोलते हैं ह्यूमिलिटी मीन्स टू नॉट हैव ईगरनेस फॉर रिस्पेक्ट, to be honored, सबके अंदर होता है थोड़ा बहुत कि मेरा क्लास सब लोग सुने, सब लोग क्लास के बाद में धन्यवाद दें. वी ऑल वॉन्ट सम क्रेडिट बट वी कैन लर्न फ्रॉम गोपाल भट्ट गोस्वामी हाउ टू नॉट डिसाइड. इतने महान भक्त होके भी महाप्रभु के इतने क्लोज पार्षद जिनके घर में चैतन्य महाप्रभु चार महीने रहे, साउथ इंडिया में किसी के घर में उतना समय नहीं रहे, चार महीने एक ही घर. और उस व्यक्ति का नाम भी नहीं चैतन्य चंद्र कि पिताजी का नाम है वो भी थोड़ा सा है, और उनका नाम मैंने बोला डिलीट कर दो मेरा नाम. सो इम्पॉर्टेंट टू बी हम्बल. प्रतिष्ठा शुक्र है रविष्ठा है ना. प्रतिष्ठा मतलब फेम. मुझे भी थोड़ा ये मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं रुक्मिणी कृष्ण को मुकम्मल से सुनना था. इतने सुंदर वैष्णव है, मैं कभी सुना नहीं इस भक्तों से, लेकिन जो भक्तों ने सुना है इनसे उनसे सुना है. ये परंपरा है. वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दिस डिवोटीज. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. पापनाशन विष्णु कैल दर्शन श्रीरंग क्षेत्रे तबे कोरिल गमन. इसका हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा शिव क्षेत्र नामक पीठ देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक जगह पर पहुंचे जिसका नाम था पापनाशन. वहां पर भगवान विष्णु जी के मंदिर का उन्होंने दर्शन किया और दर्शन करने के बाद वो श्रीरंगम पहुंचे. तो प्रभुपाद जी बताते हैं पापनाशन दक्षिण भारत में दो तीर्थ हैं जिनका एक ही नाम है. एक है जो कुंभकोणम के पास है. कुंभकोणम नाम सुने तो कुंभकोणम वो ये कुंभकोणम तमिलनाडु में है 8 मील. तो एक है कुंभकोणम से 8 मील दूर है उसको पापनाशन बोला है, और एक है तिरुनलवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के पास है. श्रीरंगम में बहुत पवित्र स्थान है. यहाँ के सबसे पास का शहर का नाम है तिरुचिरापल्ली. जो बड़ा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट है वो तिरुचिरापल्ली है, और वो कुंभकोणम से 10 मील दूर है. यहाँ पर ये कावेरी नदी के तट के ऊपर है ये शहर. श्रीरंगम भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, और ये मंदिर ऐसा है कि भगवान ठाकुर जी बीच में है, और फिर मंदिर के आंगन है, फिर उसके बाद थोड़े से घर हैं, फिर दीवारें हैं, एक दीवार के बाद फिर थोड़े से घर हैं, थोड़े 100 मीटर 150 मीटर फिर एक और दीवार है. ऐसे 7 दीवारें, 7 दीवारों के अंदर ठाकुर जी निवास कर रहे हैं. श्रीरंगम तक 7 मार्ग जाते हैं के नाम बताए गए हैं. धर्म मार्ग, राजमहेंद्र मार्ग, कुलशेखर. मैं डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि लंबा पर्पट है, लेकिन बड़े बड़े संत श्री संप्रदाय के जैसे रामानुजाचार्य के गुरु थे यमुना, शिक्षा गुरु यमुनाचार्य, उनके शिष्य थे कुरेश, और बड़े एक आलवर हुए कुलशेखर महाराज जिन्होंने मुकुंदमाला स्तोत्र लिखा है. ये सब भक्त का हेडक्वार्टर श्रीरंगम है. अभी भी श्री संप्रदाय के भक्तों के लिए श्रीरंगम सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है. लक्ष्मी के अवतार हैं गोदा देवी या अंडाल, वो 12 अलवर में से गए. अलवर मतलब जिन्होंने बहुत भगवान की भक्ति की है, बड़े संत हैं, और जहां जहां अलवर गए उसको दिव्य देशम बोलते हैं. तो श्री संप्रदाय में 108 दिव्य देशम, 107 इधर है और 108 बोलो लास्ट में. गोवर्धन भी एक है उसमें से, गोकुल भी एक है. तो आप में से कोई भक्त गए कभी श्रीरंगम? बहुत सुंदर स्थान. रिक्वेस्ट करूंगा इतने कृष्ण प्रभु से सबको लेकर आए श्रीरंग। हमारे वहां बहुत पहचान है आपके लिए, प्रसाद और रहने की व्यवस्था करने की। सबको एक साथ मत ले आना, सौ सौ करके ले आना। साउथ इंडिया में एक कल्चर बहुत अच्छा है कि जो हॉस्पिटैलिटी बहुत ही अच्छी है। तो हम हमारे आचार्य हमारे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दो दो आइटम्स लिए चारों संप्रदाय से, है ना, मध्वाचार्य से एक, रामोजीचार्य से। रामोजीचार्य से उन्होंने क्या सीखा, मतलब क्या क्या चीज ग्रहण की, वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति बिना ज्ञान। कभी कभी डिवोटी सोचते अरे ये श्री संप्रदाय है, ये हम हमारी संप्रदाय नहीं, इनको हमें आदर नहीं करना चाहिए। हम अपनी संप्रदाय में लॉयल रहेंगे लेकिन तब संप्रदाय से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आफ्टर ऑल सब भगवान तो एक ही, ऐसे नहीं कि इसको उनके भगवान एक कोने में श्री संप्रदाय वाले दूसरे ब्रह्मांड में है। अल्टीमेटली भगवान एक है। वी शुड लर्न फ्रॉम, मेरा एक्सपीरियंस है कि साउथ में श्री संप्रदाय के इवन गृहस्थ डिवोटीज बहुत ही सेवा भावना है। कोई भी आ जाए उसको बहुत अच्छा व्यवहार है। और यही चीज प्रभुपाद जी भी हमें सिखा रहे हैं मेरे इस काम में। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि गोदा देवी का विवाह श्री रंगनाथ से हुआ था और अंत में गोदा देवी भगवान के शरीर में प्रवेश किए। और एक कहानी प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक संत थे जो अलवर थे लेकिन माया में गिर गए थे और वो एक वेश्या के जाल में फंस गए थे। बहुत लंबी कहानी है लेकिन प्रॉपर शॉर्ट में बताते हैं। और अंत में भगवान रंग श्री रंगनाथ जी ने क्या किया कि अपने नौकर के साथ एक सोने की थाली महाप्रसाद उसके लिए भेजा। देखो भगवान कितनी दया करते हैं उस भक्त पे जो माया में गिर गए, सोने की थाली। हरे कृष्ण, जो माया में नहीं है उसको पत्थर में मिलता है। लॉर्ड की स्पेशल उमर्स। तो फिर पुजारी उठे जो टेंशन आ गया, प्रॉब्लम क्यों, थाली गायब। और ढूंढते ढूंढते उनको पता चला यहाँ पर थाली है। तब भक्त ने देखा कि भगवान रंगनाथ कितने दयालु हैं कि मेरे लिए ऐसी कृपा की, तो फिर से आके मंदिर में सेवा में ज्वाइन हुए। रामाचार्य के एक शिष्य थे खुरेश, खुरेश के पुत्र थे पराशर। यहाँ पर प्रभुपाद राम पिलाई लिख रहे हैं जिनका नाम बाघ विजय भट्ट हुआ, उनके पुत्र वेद व्यास सुदर्शन आचार्य। बहुत लंबी कहानी, हम सिर्फ वो भाग पढ़ना चाहते हैं अभी जो आज के दिन से। कावी रीते स्नान करी देखी रंगनाथ, स्तुति प्रणति करी मानीला कृतार। चैतन्य महाप्रभु ने कावेरी नदी में, मैं बताना भूल गया कि ये मंदिर जो है ये कावेरी नदी के तट पे, मतलब एक आइलैंड की तरह नदी ऐसे उसको तीनों साइड से घेर ले आइलैंड। और वहां पे स्तुति की कृतार्थ मानो बहुत देर कीर्तन करते रहे। श्री वैष्णव एक, ये सिंपल है आप मेरे पीछे बोले, श्री वैष्णव एक वेंकट भट्ट नाम प्रभु रे निमंत्रण कोईलो करिया सम्मान। इसका अर्थ है कि वहां पर एक महान वैष्णव थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट। उन्होंने प्रभु को बड़े आदर से कहा कि आप मेरे घर में आइए प्रसाद के लिए, रहने के लिए। तात्पर्य श्री प्रभु का द्वार। श्री वेंकट भट्ट वैष्णव ब्राह्मण थे और श्री रंग क्षेत्र के निवासी थे। वे रामानुजाचार्य की परंपरा में थे। श्रीरंगम तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। इस प्रांत में जनरली लोग वेंकट नाम नहीं रखते। फिर उनका नाम वेंकट कैसे पड़ गया, प्रभुपाद जी रहस्य बताते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका मतलब यह है कि वो किसी दूसरे स्थान के रहने वाले थे लेकिन बहुत सालों से वहां पे रह गए। जैसे कोई मारवाड़ी फैमिली से है लेकिन बहुत सालों से बंगाल में रह रहे हैं तो बंगाली सीख जाते हैं। जैसे यहाँ बताया गया कि वो बहुत दूसरे प्रांत से थे लेकिन यहाँ सेटल हो गए। वेंकट भट्ट रामानु संप्रदाय के बड़ गलाई शाखा से थे। दो ब्रांच में, एक बड़ गलाई और दूसरा टेंगलाई, डिफरेंट थोड़ा सा मतभेद है इसमें। दोनों श्री संप्रदाय में है। उनके बड़े भाई का नाम था, वेंकट भट्ट के बड़े भाई का नाम था प्रबोधानंद सरस्वती, और एक भाई का नाम था तिरुमला भट्ट, और उनके पुत्र का नाम था गोपाल भट्ट, गोपाल भट्ट के चाचा का नाम था प्रबोधानंद। वेंकट भट्ट के पुत्र बाद में उनका नाम है गोपाल भट्ट, और उन्होंने वृंदावन में कौन सा मंदिर स्थापना किया, राधा रमन, क्योंकि हमारे अभी राधिका रमन है तो स्पेशल रिलेशनशिप। नरहरि चक्रवर्ती ने किताब लिखी है जिसका नाम है भक्ति रत्नाकर, तो प्रभुपाद लिखते हैं अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये किताब को पढ़ सकते हैं। आप में से किसी ने पढ़ी है ये किताब भक्ति रत्नाकर? अभी इंग्लिश में भी उसका अनुवाद हो गया है, तो मैं थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगा आप सबके वैष्णव के आशीर्वाद से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। एक चीज जो आज मैं नाम जपते समय सोच रहा था मेडिटेशन, कि कैसे गोपाल भट्ट के लिए भगवान दामोदर शिला से प्रकट हुए। उनके पास 12 शिलाएं थी जो वो गंडकी नदी से लेकर आए थे, नेपाल में नदियां गंडकी नदी, और एक्चुअली गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने नम्र थे कि वो शिलाओं को सेवा कर रहे थे, तो मन में सोच रहे थे कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, भगवान की सेवा करने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, मैं क्वालिफाइड नहीं, तो वो शिलाओं को वापस पानी में डाल देते, लेकिन वो शिलाएं वापस छलांग लगा के उनके बैग में आई। तो कितना भगवान का प्रेम, मैं होता तो शायद शिलाएं बैग से पानी में चले जाते, भगवान जब हमारी विदेश शुद्ध नहीं होता तो भगवान सेवा नहीं स्वीकार। और बाद में उन्होंने नसीब ऋषि का दिन था ना, द डे ऑफ नसीब ऋषि, नेक्स्ट डे नसीब ऋषि के दिन उन्होंने प्रार्थना की रात को भगवान से, भगवान आप तो पत्थर से प्रकट हो सकते हैं, शिला से प्रकट हो सकते हैं, खंभे से प्रकट हो सकते हैं, ये शिला है आप चाहे तो इसमें से प्रकट हो। उसमें से एक छोटी शिला थी जिसका नाम था दामोदर, उसमें से ठाकुर जी प्रसन्न प्रकट हो, मैं सुंदर दिव्य रूप जस्ट मे बी वॉट। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि पूरे वृंदावन में सबसे ज्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ये राधा रमन मंदिर का। जब उन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को ये मूर्ति दिखाई तो इतने खुश हो गए, उन्होंने बताया इसके चरण कमल बिल्कुल मदन मोहन की तरह, इनके वक्षस्थल गोविंदेव की तरह, और इनका मुख गोपीनाथ की तरह, तीनों डीटीज के बेस्ट फीचर्स। और क्योंकि ये रासलीला के स्थान से प्रकट हुए निधि वन से, इसलिए इनका नाम रखा राधा रमन। तो मैं इतना ज्यादा कि हमारा हृदय भी अभी कठोर है, एक शिला के समान। हम प्रार्थना करें तो हमारे हृदय में भी राधिका रमन प्रकट हो। ऑलरेडी हैं, ऑल्टर पे हैं, हमारे हृदय में भी हैं, लेकिन हमारे हृदय में राधिका रमन के साथ साथ थोड़ी गंदगी भी है। वहाँ क्लीनिंग करना है इसका, यानी ऑल्टर की सफाई करनी। चैत्र दर्पण हमारा दिन आएगा जब हम भी प्रेमांजना चुरितम भक्ति विलोचन संत सदैव हृदय शिव लोक, तब हम भगवान को हृदय में देख सकते। जैसे अभी हमने पढ़ा कि वेंकट भट्ट साउथ इंडिया कई दूसरे भाग से थे, लेकिन बहुत वर्षों से श्रीरंगम में रह गए। थोड़ा दो मिनट के लिए बताऊंगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी है कि एक आपको पता है ये श्रीरंगम के डीटीज कहाँ कैसे प्रकट हुए यहाँ पर। एक्चुअली ये विग्रह की सेवा पहले ब्रह्मा जी द्वारा हुई थी और बाद में ये भगवान रघु कुल के वंश में दी गई। और जब भगवान ने लंका के ऊपर चढ़ाई की कुछ समय के लिए डीटीज वहां थे साउथ में, साउथ में जा रहे थे। यस, जब भगवान ने लंका पे चढ़ाई की, लंका पे विजय प्राप्त कर ली और फिर भगवान राम वापस अयोध्या आए पुष्प विमान में, विभीषण को भी साथ में ले थोड़े समय के लिए। भगवान विभीषण से इतने खुश थे, भगवान ने बोला ये विग्रह श्रीरंगम मैं आपको सौंप रहा हूं, आप ले जाओ। तो श्रीरंगम से अंतर वो विग्रह को ले जा रहे थे अयोध्या से वापस श्रीलंका, लेकिन कोई भक्त प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, तो भगवान की प्रेरणा से विभीषण रास्ते में नीचे उतरे और भगवान ने उनसे बताया कि अब मैं यहीं पर सेवा स्वीकार करना चाहता हूं। और विभीषण ने कहा लेकिन लंका, आप श्रीलंका का उद्धार कैसे हो, आप रहेंगे, आपकी कृपा कटाक्ष से पूरे श्रीलंका का कल्याण हो सकता है। भगवान ने बताया ठीक है मैं यहां पर रहूंगा, लेकिन मेरी दृष्टि जो है वो श्रीलंका की तरफ रहेगी। एक ही मंदिर है यहां पर, भगवान दक्षिण दिशा में देखें। जनरली मंदिर पूर्व दिशा में होते हैं ना, भगवान के जो ऑल्टर ईस्टर्न साइड में होते हैं सूर्योदय की तरफ, इसलिए भगवान दक्षिण दिशा में। तो बहुत पुरानी पीड़ताओं के कारण फिर डीटीज निग्लेक्टेड थे उस समय के लिए। बड़ी लंबी कहानी है, फिर कुछ भक्तों ने उनको बाहर निकाला और कुछ भक्तों ने मिलकर मंदिर का निर्माण किया। ये मंदिर निर्माण की योजना भी बहुत विचित्र है, आपको मालूम है ये मंदिर निर्माण कैसे हुआ श्रीरंगम का? वो एग्जाम्पल यहाँ दिल्ली में फॉलो करना अच्छा नहीं है। वहां पे क्या था कि बहुत लोग प्रयास कर रहे थे, कोई फंड रेजिंग के लिए डोनेशन दे ही नहीं रहा था। जैसे हमारे केशव मुरारी प्रभु रोहिणी में सुंदर मंदिर बना रहे, कई डिवोटीज वॉलंटरली कर रहे हैं। तो प्रभु मायापुर में बोल रहे थे बहुत जल्दी निर्माण हो जाएगा, कितने 6 मंथ,
नेक्स्ट ईयर कार्तिक
1 ईयर। तो क्योंकि डोनेशन आ रहे हैं, भक्त हेल्प कर रहे हैं, उस समय कोई डोनेशन नहीं दे रहा। तो फिर एक आचार्य ने निश्चय किया कि एक ही तरीका है कि डाकुओं की सहायता से पैसे एकत्र कर। शायद कोई मेरा लेक्चर सुनेगा तो भी पुलिस कंप्लेन हो सकता है। लेकिन ये बहुत स्पेशल केस है, ये एक बहुत बड़े संत ने उनका अलवर थे, वो 12 अलवर में से थे। फिर उन्होंने डाकुओं की सहायता से फंड रेजिंग किया। फंड रेजिंग मतलब कोई रिसीट वगैरह नहीं, धमकी दे के डरा के मार के फिर इतना बड़ा मंदिर बना। और बाद में उनका क्या हो मैं कहानी यहाँ नहीं बताऊंगा। बट देवर डिलेवर, उन्होंने जो चोरों थे उन्होंने भी किस तरीके से पैसे दिए, उनका भी उद्धार हो गया। ये वो तो क्या है, वो चोरी छोड़ नहीं सकते, उनको हम बोलते आओ आप मंदिर में रहो प्रसाद लो, वो नहीं, वो चोरी करनी ही थी और जो देने वाले थे वो दे नहीं रहे थे। तो उस समय जो आचार्य थे उन्होंने चोरों को सेवा में लगाया और जिनसे चोरी की उनको सेवा में लगाया और जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे उनको सेवा में लगाया। के लिए एग्जाम्पल है जो बहुत रेयर केस में किया जाता है, ये इतना विशाल मंदिर है। तो गोपाल भट्ट का, गोपाल भट्ट गोस्वामी का घर वहीं पे है, अभी भी वो घर वहां पर है, परिक्रमा मार्ग में। तो वहां पर एक बड़े पुजारी मुरली भट्ट कर, हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर से हम लोग 2 साल पहले यात्रा में गए थे, 4-5 हजार भक्त, तो मुरली भट्ट बहुत क्लोज भक्त है रंगनाथ, वो इस्कॉन डिवोटीज को बहुत लाइक करते हैं, तो उन्होंने बहुत हमारे लिए स्पेशल व्यवस्था की दर्शन के लिए और रहने के लिए। तो जिस सामने एक छोटा सा जगन्नाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु रेगुलरली जाते थे उनके घर के सामने। अरे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि श्री संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय, हालांकि अलग अलग सिद्धांत हैं, वहाँ पर नारायण की पूजा होती है, यहाँ पर राधिका रमण की पूजा होती है, यहाँ पर भगवान राधा रानी से विहार कर रहे हैं, ये नारायण जी लक्ष्मी के साथ, ये भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमें समाज में एक साथ रहना है तो विविधता में भी एकता देखनी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी को अचिंत्या भेदा भेद तत्व बोल, भगवान और जीव एक भी हैं और अलग भी हैं, एक है गुण में क्वालिटी में और अलग अलग हैं मात्रा में। तो वेंकट भट्ट वहां पर निवास कर रहे थे, और जैसे भी हमने पढ़ा श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए, उस समय गोपाल भट्ट की उम्र सिर्फ 4 महीने थी। वेंकट भट्ट ने निवेदन किया कि आप हमारे घर में रहिए, अभी चतुर्मास्य का समय है। ये इंटरेस्टिंग है, चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट के घर जब भी आए वो एग्जैक्टली इसी समय था, अभी जैसे चतुर्मास्य 2 दिन पहले ही शुरू हुआ, इसी समय आए और 4 महीने कार्तिक तक रहे एक ही घर। अमेरिका से अप्रोक्सीमेटली 1512 500 साल पूरे हो गए, और ये साल तो बहुत स्पेशल है 1515, क्योंकि अब श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन आके 500 साल हो गए, इसलिए ये कार्तिक में तो बहुत बड़ा, सब इसको उनके सारे डिवोटीज आना चाहेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पहुंचे वृंदावन कार्तिक के महीने में, कार्तिक पूर्णिमा के समय। तो वेंकट भट्ट भगवान को अपने घर में ले गए, और उन्होंने बर्तन लेकर भगवान के चरण को धोया, और वो चरणामृत अपने सारे परिवार सदस्यों को दिया। गोपाल भट्ट छोटे बालक थे, लेकिन उनको भगवान से स्वाभाविक प्रेम हो गया। छोटे बालक गोपाल भगवान चैतन्य महाप्रभु के पैर मसाज करते, और वेंकट भट्ट को खुशी थी कि मेरा बेटा एक साधु की सेवा कर रहे हैं। इसलिए वेदी कल्चर में माता पिता को बहुत प्रसन्नता होती है जब बच्चे कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हैं, या अगर फुल टाइम सेवा में भी लगते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि आजकल माता पिताओं को दुख होता है कि मेरा बेटा फुल टाइम सेवा में लगा है, लेकिन अगर आप वास्तव में देखें, अगर कोई एक पुत्र भगवान की सेवा में पूर्ण समर्पित हो जाता है तो कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति फुल टाइम सेवा में लग रहे हैं वो अपने पिताजी या माता की सेवा नहीं कर रहे, खाली वो सेवा को और ज्यादा मात्रा में कर रहे, पिता दादा पर दादा, दादा टू द पावर ऑफ 5-6-7 सबका उदाहरण है। तो वेंकट भट्ट इतने खुश हुए कि मेरे बेटे भक्ति कर रहे हैं, लेकिन मसाज करते हुए वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट सोच रहे थे कि मैंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण वही राधिका रमण, लेकिन कृष्ण तो बहुत सुंदर है, कृष्ण के घुंघराले बाल हैं, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु तो शेव ढेड़ है, उनके बाल भी नहीं, बल्कि तपस्या कर रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं, क्यों भगवान ऐसा कठोर जीवन बिता रहे हैं। ऐसा सोच रहे थे, उनको एक रात को एक स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने पूरा मायापुर धाम देखा, श्री चैतन्य नित्यानंद द्वैताचार्य गदाधार श्रीवास सब जोर से गा रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पूरा नवद्वीप धाम उनको दिखाई पड़ा। और उस समय गोपाल भट्ट भगवान के बाजू में साइड साइड में चल रहे थे, नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य पास में थे, और उन्होंने गोपाल को अपने पास में बुलाया और कान में कुछ बोला, लेकिन वह आवाज सुनते ही गोपाल भट्ट की नींद खुल गई और सपना भंग हो गया। तब उनको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से अभिन्न। वो तुरंत मैं एक पॉइंट बताना भूल गया, ये लीला को देखने के बाद वो अंदर गए महाप्रभु के कमरे में और वहां देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु श्याम सुंदर रूप धारण कर लिए, वेणुम कोनंतम अरविंद दलाय ताक्षम त्रिभंग ललित रूप, हाथ में मुरली। और गोपाल भट्ट को आश्चर्य हुआ, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया तो फिर वो रूप फिर बदल गया, कृष्ण से बदलकर वो नवदीप चंद्र जो महाप्रभु संन्यास से पहले थे, आजान लंबित लंबित भुजाएं, घुंघराले केश और बहुत सुंदर पीले वस्त्र। गोपाल भट्ट ने फिर से प्रणाम किया और तीसरी बार देखा तो फिर से वो सन्यासी श्री कृष्ण चैतन्य। तब उनको पता चला इसकी ये वही भगवान है, वही कृष्ण है, वही नवदीप चंद्र है और वही सन्यास के बाद, सन्यास के बाद क्या नाम होता है, श्री कृष्ण चैतन्य। भगवान महाप्रभु ने गोपाल को अपनी गोद में लिया और इतने आंसू से उनको पूरा स्नान करवाया और भगवान ने कहा कि देखो मेरी इच्छा है कि तुम वृंदावन जाओ। वहां पर मेरे दो बहुत सीनियर शिष्य हैं, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, आप उनके संग में रहकर कृष्ण भक्ति का अभ्यास करो और ये दोनों बड़े बड़े ग्रंथ लिखेंगे और बाद में तुम्हारे शिष्य उन ग्रंथों का वितरण करेंगे, लेकिन अभी मत जाओ क्योंकि तुम्हारे माता पिता अभी जीवित हैं, अपने माता पिता की सेवा करो। जब वो उस अवस्था में पहुंचे शरीर छोड़ने की अवस्था में और वो आपको आज्ञा दें तब आप वृंदावन जाना। कुछ दिनों बाद श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन वेंकट भट्ट से मजाक करने लगे। वेंकट भट्ट के मन में थोड़ा सा गर्व था, अभिमान था कि मैं लक्ष्मी नारायण का उपासक हूं, मैं बहुत सिंसियर सेवा कर रहा हूं। तो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा वेंकट भट्ट आप तो नारायण की पूजा करते हैं और लक्ष्मी देवी उनकी शक्ति, लेकिन हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि लक्ष्मी देवी भी भगवान नारायण को त्याग करके भगवान श्याम सुंदर का संग करना चाहते हैं, ये कैसा है? वेंकट भट्ट ने बताया कि नारायण और कृष्ण दोनों एक ही हैं। जैसे कोई स्त्री अपने पति का संग कर रहे हैं लेकिन अलग अलग वस्त्रों में, तो उसमें कोई फर्क नहीं, नारायण और कृष्ण एक ही हैं, वो एक ही व्यक्ति के अलग अलग रूप हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बोले सही है, फिर भी ऐसा क्यों है कि लक्ष्मी देवी रासलीला में प्रवेश करना चाहती है और प्रवेश नहीं कर पा। वृंदावन में एक जगह है जहां पर लक्ष्मी देवी बैठकर तपस्या कर रहे हैं, कौन सी जगह है, बेलवन या श्रीवन? बेलवन, उसी का नाम है श्रीवन, ये 12 वनों में से एक है। लक्ष्मी देवी को रास्ते प्रवेश नहीं मिला, इसका क्या उत्तर है? तो वेंकट भट्ट ने अंत में जवाब दिया, आप स्वयं नारायण हो, आप ही कृष्ण हो, आप ही जवाब दे दो, मैं एक क्षुद्र जीव हूं, मैं बद्ध जीव हूं, मैं क्या बोल सकता हूं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया, पहले तो हालांकि कृष्ण और नारायण एक ही हैं, लेकिन कृष्ण के अंदर कुछ गुण हैं जो नारायण में नहीं पाए जाते, वो 4 गुण हैं जो कृष्ण में पाए जाते हैं और भगवान नारायण में नहीं है। कौन कौन से 4 हैं? लीला माधुरी, भगवान के सुंदर लीलाएं, बाल्य लीला, रास लीला, हम देखते हैं भगवान खेल रहे हैं, श्री रामा उनके कंधे के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी देखा कि नारायण के ऊपर कोई चढ़ रहा है? ये बड़ा सख्य भाव है, नारायण के भक्ति में सख्य भाव नहीं आता, तो दास्य भाव है, लीला माधुरी। दूसरा वेणु माधुरी, भगवान की वेणु कितनी सुंदर, मुरली, वेणु, बंसी। चर प्राणी वेणु गीत एक अध्याय है भागवतम में, इतनी सुंदर बहुत सुंदर वर्णन है कि वेणु की आवाज से यमुना नदी बिल्कुल स्तब्ध हो जाती, जो प्राणी चल रहे हैं, चल रहे हैं, वो स्तब्ध हो जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं। हिरण अपने कानों को फैलाकर कृष्ण के मुख से निकलने वाले कृष्ण के अधरामृत को पान करना चाहते हैं। उसके प्राणी अचर हैं, वो चलने लग जाते हैं। भगवान की मुरली का आवाज न केवल धरती 14 भवन में सुनाई पड़ता। इसलिए प्रभुपाद एक सुंदर पर्पट लिखते हैं रामानंद राय की लीला में, तो कई बोलते हैं देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फ्लूट ऑफ कृष्णा एंड द हरे कृष्णा महामंत्र। जो कृष्ण की मुरली से आवाज आती है वही कृष्ण, जो द्वापर में मुरली बजाते हैं वही कृष्ण कलयुग में आके वही ध्वनि का प्रचार करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लीला है माधुरी, वेणु माधुरी और कृष्ण भक्त माधुरी। कृष्ण के हमेशा प्रेममय भक्त, कृष्ण इज ऑलवेज सराउंडेड बाय हिज डिवोटीज। ब्रज लीला, एक बार एक माता जी ने एक सुंदर पेंटिंग बनाई, कृष्ण की पेंटिंग, और प्रभुपाद जी को अर्पण की। प्रभुपाद जी बोले नहीं, इस पेंटिंग में कृष्ण अकेले हैं, लेकिन कृष्ण कभी अकेले नहीं होते, हमेशा कृष्ण के साथ या तो ग्वाल बाल हैं, गोपियां हैं, मोर है, गाय है, कृष्ण इज नेवर अलोन, इज ऑलवेज सराउंडेड बाय हिज डिवोटीज। और चौथा है रूप माधुरी, कृष्ण की सुंदरता। कृष्ण जब गोपियां कृष्ण की सुंदरता को देखते हैं तो मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि हम बस देखते ही रहे, कितने एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे आपको कोई भी अच्छी लगती है तो सोचते हैं हम वो करते ही रहे, मान लो गुलाब जामुन अच्छा लगता है खाते ही रहे, कृष्ण की सुंदरता का पान करते हैं। गोपियां ब्रह्मा जी को कंडम करते हैं, ब्रह्मा जी को थोड़े ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि ये ज्यादा बुद्धिमान नहीं है क्रिएटर, उनको उन्होंने ऐसी आंखें बनाई हैं जिसमें पलक झपकते हैं, नहीं प्रवचन में तो बहुत झपकते हैं नहीं लेकिन ऐसी आंखें बनानी चाहिए कि हम कृष्ण को नॉन स्टॉप देख सकें। और कृष्ण की सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए, इवन कामदेव भी कंदर पकोटि कमनीय विशेष सुंदर, कोटि कोटि कामदेव भी आकर्षित हो जाते, इवन कृष्ण भी आकर्षित हो जाते। एक कहानी है कि एक बार कृष्ण जा रहे थे द्वारका में और अपने खुद को देखा, मैं कृष्ण अपने आप को देख सकते कौन है ये व्यक्ति जो मेरे मन को भी आकर्षित कर रहे, कि मुझे कृष्ण की आनंद वृंदावन चंपू में एक लीला है, कवि कर्णपुर बताते हैं। कृष्ण जब माखन चोरी कर रहे थे, एक दिन कृष्ण माखन चोरी कर रहे थे और बर्तन में ही हाथ होता है, उस समय यशोदा मैया आ जाते हैं, अभी क्या करेंगे आप, नहीं आप कुछ चोरी कर रहे हैं और जो देखने वाला व्यक्ति पुलिस सामने ही आ गए, मैया मैया आज ना आपने नए नए आभूषण पहनाए हैं उसके कारण हाथ में बहुत गर्मी लग रही है, सिर्फ गर्मी दूर करने के लिए मक्खन में हाथ डाला, खाने का प्लान नहीं होगा। अरे एक बार तो कृष्ण मक्खन चुरा रहे थे, उनका एक मित्र आया और कृष्ण बोले आप बताना मत, मैं आपको भी दूंगा। और थोड़ी दूर जाने के बाद यशोदा मैया को बताया कि यहां पर एक बालक है। एक बार तो एक गोपी ने कृष्ण को पकड़ लिया, यशोदा माता ने बोला था अगर कृष्ण चोरी कर रहे हैं तो आप उनको पकड़ कर ले, रंगे हाथ पकड़ लिए और कृष्ण को खींचते हुए ले गए मैया के पास। कृष्ण गोपी को बोलने लगे, गोपी मुझे छोड़ दो फिर मक्खन नहीं चुराऊंगा, नहीं 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 मैं आप मुझे छोड़ दो नहीं तो आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अरे मैया यशोदा यशोदा दरवाजा खोलो, देखो तुम्हारा लाला पकड़ा गया है। यशोदा ने दरवाजा खोला, क्या हुआ, ये देखो तुम्हारा कृष्ण। यशोदा ने देखा तो गोपी के हाथ में उस गोपी का ही बेटा था। माता बोली तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर में मक्खन खा रहा है, इसमें क्या दोष है, तुम मेरे काना को क्यों दोष दे रहे हैं। और फिर जब दरवाजा बंद कर दिया गया तो फिर कृष्ण फिर से कृष्ण बन गए। कृष्ण बोले गोपी को मैंने पहले ही बताया था आपको, अगली बार पकड़ा तो तेरे पति का रूप धारण कर। कृष्ण कितनी मधुर लीला है। मैं तो बद्ध जीव हूँ, आप भी अधिकांश बद्ध जीव हैं, हमको इतना अच्छा लग रहा है। आप सोचिए मुक्त पुरुषों को कैसा लगता होगा भगवान की लीलाएं सुनना, जिनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, उनको भूख और प्यास की ये नहीं होती, वो क्या आनंद लेते होंगे। वो दिन कब आएगा जब हम भगवान की लीलाओं को नाम में आनंद लेंगे। रूप गोस्वामी बोलते हैं जब मैं दो अक्षर बोलता हूँ कृष्णा, बोलिए कृष्णा कृष्णा कृष्णा, तो मैं इच्छा करता हूँ कि क्या इच्छा करते हैं लाखों जीवा तो इसे प्रे तंदे तंदे भी मैं गेट टेस्ट फॉर कृष्ण नाम। तो इस तरह से चैतन्य आपको समझाते हैं कि चार गुण है, और फिर चैतन्य आपको समझाते हैं कि लक्ष्मी देवी का जो संबंध है वो माधुर्य भाव में नहीं है, वो ऐश्वर्य भाव। कृष्ण जब नारायण के रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं तो उसमें ऐश्वर्य की प्रधानता होती है, लेकिन वृंदावन में कृष्ण जो है उनमें ऐश्वर्य नहीं है। वृंदावन का ऐश्वर्य है वहां की मिट्टी, मोर का पंख, थोड़े से मिनरल्स, खनिज, गाय, गाय का दूध निकालना, ये सेवा है। लक्ष्मी देवी अगर ब्रजभाव में प्रवेश करना है तो ब्रजवासियों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। रम्य क्वाचित उपासना ब्रजवधु वर्गे न यो कल्पित, अगर आराधना करनी है तो ब्रजवधु जो गोपियां हैं उनके पद चिन्हों में चलना। लक्ष्मी देवी को अगर रास में प्रवेश करना है तो शर्त है कि गोपियों के पद चिन्ह में चलना, मतलब गाय का दूध निकालना, गोबर सफाई करना। लेकिन लक्ष्मी देवी का ऐश्वर्य भाव इतना प्रधान था कि वो भगवान की रासलीला में प्रवेश नहीं करता। ये गोपियों का प्रेम बताया गया इतना महान है कि उद्धव, उद्धव तो भगवान के निजी सखा थे, भगवान जैसे थे दिखने में, लेकिन वो भी जब ब्रज में प्रवेश करते हैं तो गोपियों के प्रेम को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अब प्रार्थना करते हैं कि मुझे इन ब्रज गोपियों के चरणों की धूल मिले, और वो जानते हैं कि गोपियां मुझे देंगे नहीं धूल, इसलिए प्रार्थना करते हैं कि मुझे कैसा जन्म मिले, एक घास के तिनके का जन्म मिले। तो चार महीने तक एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट को ये डिस्कशन पूरा पराजित कर देते हैं, और अंत में बोलते हैं एक्चुअली भगवान नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। महाप्रभु उनके अभिमान को दूर करना चाहते थे, लेकिन साथ साथ वो खुश है। महाप्रभु एक एक्सपर्ट सर्जन है, जो सर्जरी करते हैं बिल्कुल पूरा अच्छा, बिना पेन के, एनेस्थीसिया के साथ। वी शुड बी वेरी केयरफुल, अगर हम किसी को प्रचार कर रहे हैं, किसी को पराजित करने का प्रयास कर, इस तरीके से करना चाहिए कि उस व्यक्ति को बुरा भी नहीं लगे। जैसे महाप्रभु ने दिग्विजय केशव कश्मीरी को पराजित किया, वो पराजित हो गया तब विद्यार्थियों के बीच में वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया, उसके मुंह से एक शब्द नहीं आया। महाप्रभु को महाप्रभु ने पराजित किया देखकर सब हंस रहे थे कि महाप्रभु ने अपने विद्यार्थियों को रोक दिया हंसों में। महाप्रभु ने उससे कहा कि अभी शाम का समय हो गया, तुम घर जाओ, कल हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी वो जानता था कि मैं पराजित हो गया, भगवान भी जानते थे, और वो भी जानता था कि भगवान जानते हैं कि मैं पराजित हूँ। भगवान बोला घर में जाओ, फिर घर में सरस्वती देवी ने उनको बताया कि आप महाप्रभु की शरण में। महाप्रभु का चरित्र बहुत ही विशाल उदार है, सब प्रकार के लोगों से कैसे डील करना है, रूप सनातन से कैसे व्यवहार करना है, जगाय मदाय से कैसे करना, सार्वभौम भट्टाचार्य से कैसे, रामानंद राय के साथ कैसे, छोटा हरिदास के साथ कैसे, श्रीवास ठाकुर के साथ कैसे, नित्यानंद प्रभु के साथ कैसे। महाप्रभु के चरित्र को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर कितने भक्तों के पास आपके घर में यह टेट है हिंदी में चैतन्य चरितामृत, अगर आपके पास नहीं है तो आज ही लेके जाइए, आप जरूर पढ़िए किताब, क्योंकि चैतन्य चरितामृत पढ़ने से ही आपको नाम में रुचि जागृत होगी, भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का आभास होगा, और फिर एक अवस्था आएगी कि आप उसको पढ़े बिना नहीं रह सकेंगे, इतना उसमें इतना टेस्टी इज लाइक। आपका सबसे फेवरेट स्वीट क्या है? रसमलाई या जो भी आपका फेवरेट, ये फर्क है कि रसमलाई रसगुल्ला आप ज्यादा नहीं खा सकते है? मोहन गौरचंद्र प्रभु आप कितने रसगुल्ले खा सकते हैं मैक्सिमम? दो, चार, पांच बोल गए मतलब दस खाते होंगे लेकिन दस बारह से ज्यादा खाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। पहली बात तो कोई सर्विंग करने वाले भी लिमिटेड होते हैं क्योंकि इतने सारे डिवोटीज टेम्पल बजट होता है चैतन्य चरितामृत कितना भी पढ़ सकते हैं, नहीं कोई सीमा नहीं है। डाइजेशन में तो ज्यादा खा लिया तो रुकना पड़ता है, मैंने अभी चार खाए तो शाम के बाद चार खा सकते हैं। चैतन्य चरितामृत ऐसा नहीं है कि वो मैंने एक घंटा सुन लिया तो अभी थोड़ा रुकना पड़ेगा डाइजेस्ट हो जाए कान में, लेकिन गो ऑन हियरिंग। ये प्रसाद है प्रभुपाद का, प्रसाद होता है जो किसी साधु के मुख से निकलता है तो महा महा प्रसाद होता है। तो प्रभुपाद के प्रसाद दो प्रकार से, एक एडिबल प्रसाद जो आप खा सकते हैं और दूसरा ऑडिबल प्रसाद जो आप सुन सकते हैं। चैतन्य चरितामृत को कविराज गोस्वामी बोलते हैं श्रूयतम श्रूयतम सदा गीयतम गीयतम मुदा चिंतयतम चिंतयतम सदा श्री चैतन्य चरितामृत। श्रूयतम सदा मतलब बार बार सुनो, गीयतम गीयतम मतलब गाओ, और चिंतयतम चिंतन करो श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम छोड़ के चले जाते हैं। गोपाल भट्ट रोने लगते हैं, वेंकट भट्ट की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन महाप्रभु उनका जाना निश्चित है। भगवान ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को आदेश दिया था कि अपने माता पिता की सेवा करो और बाद में उनकी मृत्यु होने के बाद आप वृंदावन में आकर रूप और सनातन गोस्वामी के मार्गदर्शन में भगवान की सेवा करना। तो गोपाल भट्ट घर में रहे और प्रबोधानंद सरस्वती को उन्होंने अपने गुरु के रूप में उनसे ज्ञान ग्रहण किया। जब कई वर्षों बाद उनके पिताजी ने आज्ञा दी कि अब हम शरीर छोड़ने वाले हैं आप जा सकते हो, तब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रस्थान किया। यानी कि साउथ इंडिया से थे वृंदावन में आए। जब वो वहां पर आए तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भूगुरूप गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी जो पहले सीनियर वैष्णव थे उन्होंने उनको अपने एक छोटे भाई के रूप में स्वीकार किया। ये वैष्णव में इतना अच्छा गहरा संबंध था। अभी देखिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों भाई थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी भी स्पिरिचुअली भाई थे, लेकिन सबका अलग अलग स्टाइल का प्रचार था। अब देखेंगे रूप गोस्वामी के राइटिंग्स अलग स्टाइल के हैं, सनातन के अलग है, उनके हैंड राइटिंग अलग है और उनके अलग अलग शिष्य थे, लेकिन सब मिलजुल के रहते थे। वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में सब कृष्ण कीर्तन गान रतन परव कृष्ण कीर्तन करते थे। ऐसे हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद के अनेक शिष्य हैं, सबका अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग चीजों पर एम्फोसिस है, लेकिन एकता इसमें है कि सब श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को दोहरा रहे हैं अपने अपने रियलाइजेशन के अनुसार। इसी से इस्कॉन में एकता हो सकती है अगर हम प्रभुपाद और कृष्ण की शिक्षाओं को केंद्र में रखते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इन सब के साथ रहकर कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में बैठे बैठे मन ही मन सोच रहे थे, गोपाल भट्ट गोस्वामी को मैंने और आदेश दिया था वृंदावन जाने के लिए, क्या वो गए कि नहीं गए? भगवान जानना चाहते थे, एक्चुअली भगवान जानते थे लेकिन नहीं जानते थे, लीला के रूप में नहीं जानते। उस समय कोई मोबाइल नहीं था, तो SMS करते रीच वृंदावन सेफली, या कोई वेबसाइट नहीं था mahaprabhu@puri.com या, तो महाप्रभु वेट कर रहे थे। अचानक इनको समाचार मिला, एक लेटर आया गदाधर पंडित के घर में, वो रूप गोस्वामी का लिखा हुआ लेटर। आपने रूप गोस्वामी की हैंडराइटिंग देखी? Have you seen handwriting of रूप गोस्वामी? अब नेक्स्ट टाइम वृंदावन जाएंगे तो इस्कॉन मंदिर से जब हम आगे की ओर मेन रोड जाते हैं फोगला आश्रम की तरफ, तो बीच में एक वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और वहां पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के हैंड रिटन, ये भी अगर अलाउ करें तो आप सपोर्ट मालूम नहीं होता। मैंने दो साल चार पांच साल पहले देखा था, उस समय ये मोबाइल्स नहीं थे उतने कॉमन, शायद अलाउ नहीं करेंगे, अगर अलाउ करें तो फोटोज ले सकते, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के बारे में बोला था ना कि उनके हैंड राइटिंग को देख के क्या कॉमेंट किया था, ये मोतियों की लड़ी है। सो जब वो लेटर प्राप्त हुआ उस लेटर में रूप गोस्वामी लिखा कि गोपाल भट्ट गोस्वामी यहां पर आ गए हैं और आप और आपकी आज्ञा से वो हमारे साथ रह रहे हैं। महाप्रभु इतने खुश हुए, वो खुश तो कुछ भेजना चाहते थे। उन्होंने रूप गोस्वामी के लेटर भेजा, गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए अपने स्वयं का कॉफिन और आसन, जो वुडन आसन जिस पर वो बैठते थे, वो उन्होंने इस भक्त को बोला कि आप वापस लेकर जाओ वृंदावन में और गोपाल भट्ट गोस्वामी को। गोपाल भट्ट गोस्वामी क्या सोच रहे थे, नहीं भगवान ने अपनी चीजें भेजी हैं, तभी शास्त्र में लिखा है भगवान की चीजें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भगवान ठाकुर जी हैं, भगवान का ऑल्टर है, भगवान के जूते हैं, भगवान का ग्लास है, भगवान की थाली है। चैतन्य चरितामृत में कहानी है कि राजा प्रताप रुद्र भगवान से मिलना चाहते थे, भगवान ने मना कर दिया, बार बार मिलना चाहते थे फिर मना किया। अंत में एक भक्त ने सुझाव दिया, भगवान आप नहीं मिल रहे तो अपना वस्त्र भेज दो। उन्होंने अपना अपनी एक्स्ट्रा एक चादर भेज दी और राजा प्रताप रुद्र उस चादर की पूजा वैसे ही कर रहे थे जैसे भगवान की पूजा। स्पेशली चार चीजें हैं जो भगवान से संबंधित है, भगवान के ही समान पूजनीय। एक है श्रीमद् भागवत, दूसरा गंगा माता, तीसरा तुलसी और चौथा है शुद्ध भक्त। आज भी आप राधारमण मंदिर में जाओगे तो ये आसन आपको दिखाई पड़ेगा, वो कूडन आसन और कॉपिन। गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्रज में अलग अलग जगहों पे भ्रमण करते थे। मैंने आपको ऑलरेडी कहानी बताई कि कैसे राधा रमन उनके पास दामोदर शिलाएं थी और नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि एक व्यापारी आए थे और वो व्यापारी बहुत अमीर थे। उन्होंने सबको सब गोस्वामियों को वस्त्र दिए, सनातन गोस्वामी को बोला मदन मोहन के लिए, रूप गोस्वामी को बोला राधा गोविंद देव के लिए, जीव गोस्वामी को बोला दामोदर के लिए। सोचे थे मेरे पास कोई ड्यूटीज होते तो कितना अच्छा होता। तो रात के समय जो प्रार्थना करने के बाद सुबह देखा सिर्फ छोटी सी शिला थी, दामोदर शिला, उसमें राधा रमन प्रकट हुए और सब भक्त आनंदित हुए उनको देखकर। यही गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं जो बाद में श्रीनिवास आचार्य के गुरु बने। श्रीनिवास आचार्य बहुत दुखी थे, एक्चुअली वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए, चैतन्य महाप्रभु चले गए। फिर चैतन्य महापुरुष सपने में आके बोले आप जाओ, आप गदाधर पंडित से दीक्षा लो, भागवत सुनो। गदाधर पंडित के पास आए, गदाधर पंडित बोले मेरे पास एक ही भागवतम है और वो मेरे आंसुओं के कारण पूरा भागवतम जो है कि प्रिंट सब खराब हो गए आंसुओं के कारण। मैंने से कितने भक्त होते हैं जो भागवत पढ़ने में इतना आनंद लेते हैं, हम भागवत को देख के हमारी आंखें बंद हो जाती हैं कई बार, लेकिन केवल देवती से कितना लव है भागवत। तो भागवत का और एक कॉपी आप ले आओ वृंदावन से। तो भागवत लाने के लिए गए और जब तक लेकर आए तो गदाधर पंडित भगवत धाम से ले गए। फिर उनको सपना आया कि आप रूप गोस्वामी से दीक्षा लो, तो रूप और सनातन से आए दीक्षा लेने और वो भी भगवत धाम से ले। फिर उनको सपना आया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास ले, गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा ली और उनको दीक्षा लेने के बाद उनको जीव गोस्वामी को सौंप दिया। ये तीन अलग अलग गुरु के शिष्य थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे श्रीनिवास आचार्य, लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु विदेह चैतन्य के शिष्य। लेकिन ये तीनों ज्ञान ग्रहण करने के लिए जीव गोस्वामी की गाइडेंस में रहते और बाद में अलग अलग जगहों पर प्रचार करते हैं। तीनों मिलकर पुस्तक वितरण करने जाते हैं, तो जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी वहां से शुरू हुई, श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम और श्यामानंद। समय हो रहा है, मैं सिर्फ एक दो वाक्य बोल के अंत करना चाहूंगा। एक दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी राधा रमन की आरती कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, क्योंकि मन में एक दुख था कि मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि तुम जाओ चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो, लेकिन चैतन्य महाप्रभु धरती पे है नहीं, मैं अपने माता पिता का आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा। ऐसे वो सोच रहे थे तो राधा रमन का रूप बदल गया और बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का रूप दिखाई पड़ा और वो रूप है गौरंगा। देखा गौरंगा महाप्रभु वहां पर है सुंदर रूप में और सुंदर आवाज में गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। तब उनको पता चल गया श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, राधा और कृष्ण एक रूप में है। गोपाल भट्ट गोस्वामी सबको बताने लगे ये कहानी कि आज मैंने देखा ये राधा रमन डीपी से ये गौरंग महाप्रभु बन गए और सारे वैष्णव बहुत प्रसन्न हुए और उनका गुणगान करने लगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने शत संस्कार क्या वो किताब संस्कार किताब उन्होंने ग्रंथ लिखे वैष्णव संस्कार के बारे में। गोपाल भट्ट गोस्वामी के इतने बड़े विद्वान थे, उनके एक शिष्य का नाम था गोपीनाथ पुजारी जो वैरागी थे, लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी की इच्छा थी कि इस परंपरा को जारी रखना है, तो गोपीनाथ पुजारी विवाह नहीं करना चाहते थे और गोपाल भट्ट भी उनसे नहीं कहा तो, लेकिन गोपीनाथ पुजारी के छोटे भाई थे दामोदर दास, तो दामोदर दास के जो परिवार के लोग हैं उनके बेटे के बेटे वो राधा रमन की सेवा को चालू रख रहे हैं। अभी 450 साल हो गए, 500 साल हो गए, अभी एकदम इंटैक्ट सब आभूषण को संभाल के रखे हैं। हर एक अगर एक भी ड्यूटी रूम से कोई आभूषण निकालते हैं तो उसका नोट किया जाता है। इससे राधा रमन इसलिए हमारे लिए विशेष प्रिय है क्योंकि जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर के ऊपर आक्रमण हो रहा था, ब्रज यात्रा ले जा रहे थे, सब विरोध कर रहे थे उनका, क्योंकि भक्ति सिद्धांत ठाकुर बहुत फ्रेंक नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग कर रहे थे, कई लोग पत्थर फेंक रहे थे, लेकिन राधा रमन मंदिर के पुजारी ने उनका स्वागत किया कि आप यहाँ से, इसलिए हमारा राधा रमन मंदिर से विशेष प्रेम है। एक बार एक देवोपी राधा रमन में दर्शन कर रहे थे, पुजारी ने पूछा आप क्या करते हो, बोले मैं अमेरिका में पुस्तक वितरण करता हूँ। तो पुजारी ने कहा ठीक है मैं आशीर्वाद देता हूँ अगले जन्म में आप राधा रमन के पुजारी बनो। देखो लगा बहुत अच्छा आशीर्वाद, प्रभुपाद के पास गए और प्रभुपाद मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं भी अगले जन्म में राधा रमन का पुजारी बनूं। प्रभुपाद बोले आप उसको जाके बोलो कि आप राधा रमन की सेवा अच्छी करोगे तो अगले जन्म में आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। प्रभुपाद दिखाना चाहते थे कि प्रचार की सेवा डीपी वर्शिप से ज्यादा ऊंची सेवा, पंजाबी बाद में तो हर मैराथन में इतनी बड़ी संख्या में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता फॉर्चुनेटली हैव टेकन द मूड ऑफ गोपाल भट्ट गोस्वामी, दोनों तरह के थे क्योंकि यहाँ राधा रमन राधिका रमन खाली थोड़ा स्पेलिंग में अंतर है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में। हम सब 2 मिनट ध्यान बंद करके प्रार्थना करें गोपाल भट्ट से कि हम उनके पद चिन्ह में चलकर राधिका रमन से हरि नाम से प्रेम कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। रुक्मणी कृष्ण के ऊपर पॉइंट्स आपको इसकी कुछ कॉमेंट या प्रश्न समय शॉर्ट में बोलिए। यस भागवतम क्या मैं पर्सनली बात टाइम भी हो ना
ये चैतन्य चरितार्थ है वो अष्ट श्लोकी है, भागवतम चतुर्श्लोकी है तो उसमें तो रसी रस होना चाहिए, तो रसी रस आपने बताया रसी रस है।
थैंक यू, बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय।